처음. 넥스트 데이.
나무 실탄 만마피 샤치 부트라 마트라 스루팡 Rupam atasya grajuripurim maturim goshtovatim Radha kundam girvarma ho radhika madhavasam Rapto jasya kripya kripya si guru muntam natosya Bancha kalpataru bhyasya कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डञ्जाबुदरोचि संवदत तन्पट्टं वरस्य धिया वृंदारण्य निवासिनं हृदिल सद्दामाभिरामोदर राधा स्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यानीं दामोदर तवैवास्मि न जीवामृतया विना इति विज्ञेय राधे तन्मां चरणम् वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न पायन मानन विष्णुनंदन कृपां बुद्धि जप दुख दुखी सनातन संप्रदाय कृष्ण नारद जी को द्वारदेश से नारद जी को द्वारदेश से पकड़कर अंदर में ले गए और बोले तुम आप हमारे प्रियतम सेवक हो और हमको सादा सुख देने की चेष्टा करते हो इसलिए तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। और यदि कहो जो भय अपराध का भय तुम्हें कोई नहीं, तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मैंने कैसे आपका हित किया, वही कहा जैसे कल मैंने बतलाया था, कृष्ण गोपियों की महिमा जगत में प्रचार करना चाहते थे और नारद जी उसी उद्देश्य से गोपियों की महिमा प्रचार करने के लिए प्रयाग से चले और कहा हनुमान जी के पास और उसके बाद में द्वारका में और उसके बाद में यहाँ पर पहुंचे। तो तुमने आपने हमारा बहुत उपकार किया, जो हमारे स्मरण में ये सब बातें आई और गोपियां जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको सर्वश्रेष्ठ मेरा विरह दुख होता है और मिलन में भी उनको वैसा ही सुख होता है। विशेष करके ये गोपियों का जो विरह है ये प्रेम का विकार है और प्रेम है सच्चिदानंद वस्तु, उस प्रेम में दुख कहाँ कैसे संभव है। जो प्रेम का विकार है वो दुख से दिखने पर भी, दुख के समान देखने पर भी उसमें दुख नहीं हो सकता। जो प्रेम का विकार है, जो प्रेम से बना उसमें दुख कहाँ, इसलिए दुख जैसा दिखने पर भी नहीं। यदि कहो हमारा दवा काम नहीं कर रहा, स्टीम लेने से और खराब होगा, थोड़ा सा ठंडा लगने से लग जाता है और स्टीम ना ले तो नहीं दुख।
आपका डॉक्टर ने बताया
स्टीम लेने से थोड़ा सा कहीं ठंडा ही हो, और देखो तुम लोगों का नहीं हो, हमारा हो जाता, किस लिए ये ठंडा उसको लेते हैं ना। हाँ अब जो जैसा है अब तो कुछ नहीं। यदि कहो नारद जी के लिए पाते हैं, यह जो प्रेम है गाढ़ो दुख परिपाक के क्रम से, कौन सा दुख, प्रज का दुख, कृष्ण का विरह दुख, अत्यंत परिपाक परिपक्व होने पर दुख विशेष से मोह और मृत्यु संभव हो सकता है। मोह भी हो माने मूर्छा भी हो सकती है और मृत्यु भी संभव हो सकती है प्रेम के विरह के दुख होने पर, जैसे श्रीमती राधिका जी का गोपियों का होता है, विशेषतः खास करके कहते हैं कि देखो जगत में एक बात प्रचलित है, वो क्या, सुख के बाद दुख, दुख के बाद में सुख, सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख, ये आता ही है। विशेषकर ब्रज का तो वो प्रेम सिंह का विकार है, इसलिए उसमें दुख की छाया नहीं है। तभी मान लो कि उसमें में जगत में जितने दुख हैं उससे करोड़ों गुण दवानल और बड़वानल के दुख से भी अधिक दुख है। दुख के बाद में फिर तो सुख आएगा, किंतु दुख का परिणाम व परिपाक के द्वारा प्रमोद राशि की स्मृति की विश्वासी योग्य है, ये प्रश्न करते हैं नारद के लिए। यदि कहो कि दुख का परिमाण या दुख परिपक्व और अधिक से अधिक होते 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 मोह मूर्छा मृत्यु तक यदि हो रहा है तो उसमें प्रमोद कहां से आएगा, आनंद कहां से आएगा, यह संभव है। गोपियां विरह में डूबती 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 चली गई। उनको सुख कब हुआ? अंत तक तो विरह में तड़पी। कृष्ण नहीं आए, आज आए कल आएंगे परसों आएंगे तरसों आएंगे बरसों आएंगे, फिर आए नहीं। तो फिर प्रमोद कैसे होगा, आनंद कैसे होगा? बात तो ठीक कहते हो, किंतु इस विषय में मेरा अनुभव ही प्रमाण है। कौन कह रहा? मैं देखा ना ब्रिज में, प्रेम सरोवर में देखा और सब जगहों में देखा। उस विरह महाविरहग्नि में भी तड़पते हुए जल रहे हैं और उसमें भी आनंद की अनुभूति होती है। सब समय एक चीज यही याद रखना, वो प्रेम का विकार है। उसमें दुख देखने वाला अथवा महाशोक और ऐसा विरह ताप देखने पर भी उसका जरूर प्रेम अथवा उसमें सुख होगा, प्रमोद राशि है, ये समझ लो। कृष्ण कहते हैं कि मैं इसके लिए अनुभव किया हूं, मेरे अनुभव की बात है, यह अनुभव ही प्रमाण है। अर्थात प्रियजन के विरह में भी, मेरे विरह में गोपियां हैं या गोपियों के विरह में मैं, विशेष करके यहां पर दिखला रहे हैं कृष्ण के विरह में गोपियां, चित्त में सुख की स्फूर्ति होती है। मैं 10 बार इस विषय को बतला चुका हूं, गोपियां विरह अवस्था में कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करती हैं, उसमें डूब जाती हैं। उस सुख स्फूर्ति के कारण स्फूर्ति कर्णांतर न था, दूसरा कोई कारणों से अनुभूति इस विषय में पर उसको वचनों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। जो मेरी स्थिति में आएगा या गोपियों की स्थिति में आएगा वही केवल समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा। इसलिए स्वानुभव मैं ही इसका प्रमाण हूं। यहां स्वानुभव गम्य प्रमाण को दिखलाने के लिए इस श्लोक को कह रहे हैं, तत्सोक दुख परमस्य पश्चाचितम जत पुनर्तया प्रसन्नम संप्राप्त संभोग महासुखे न प्रसन्न वचती तिष्ठति सर्वदैव। उसी के लिए कह रहे हैं, विरह जनित जो शोक और दुख उसकी निवृत्ति के पर में जब वह शोक और दुख मिट जाता है, जैसे कृष्ण सिद्ध देखो इस विराग्नि के बाद में कृष्ण इसके बद के बाद में के बद में आए और मिले और मिलकर के सब ब्रज लीला को अपने साथ में और उनके जितने परिकर हैं सबको लेकर के चले गए, अर्थात तो अप्रकट लीला में चले गए। तो उस समय क्या हुआ, सुख हुआ कि नहीं? अंत में जब लेकर के गए गोलोक वृंदा के बन के प्रकाश में जब प्रवेश कर गए, तो उस समय दुख रहा कि नहीं, जो विरह का दुख था? नहीं रहा। अथवा शोक के द्वारा जो दुख होता है, शोक दुख के उपशम के बाद में विरही का मन प्रसन्न होकर के संपूर्ण रूप से वो विपरीत अवस्था विशेष अत्यंत आनंदमय हो उठता है। जिस समय कृष्ण अंत में ब्रज में आए दंत वक्त का वध कर और गोपियों से मिले और मिल करके फिर उनको लेकर के अप्रकट लीला में चले गए। अब दुख अप्रकट लीला में विराही में वहां गोचारण का अत्यंत संक्षिप्त विरह माथुर विरह में कहते हैं जो 3 महीने का है वो भी न के बराबर। सही सुख कृपा का वो सुख कैसा है, संभोग सुख संपन्न की भांति महासुख होता है विरह शांत होने के बाद। अर्थात मिलन के अभाव में चित्त में एक जो न्यून अभाव अथवा अपूर्णता जो थी वह नहीं रहे। जैसे कृष्ण के विरह में गोपियां डूब रहे हैं, डॉक्टर दोते उनको ये स्फूर्ति हुई जब कृष्ण से अभी हमसे मिले, जब वो मिले और देखा क्या राधा जी कह रहे हैं सखियों से किसने हमारा आंख बंद किया, तो कृष्ण क्या कहते हैं गोपियां कहते राधा जी कहती हैं ये कृष्ण है, पहले कहते हैं ललिता फिर विशाखा फिर चित्र अंत में हाथ और उनका सुगंध नाक में आया, ओ ये कृष्ण है। और बतलाओ देखें स्फूर्ति में इसमें सुख है कि नहीं, इस मिलन में विरह में भी जो मिलन का सुख है तो सुख कौन समझेगा, जिसको अनुभव गम्य है वैसा कोई भक्त है, ऐसा गोपियों के भाव जैसा जिसके है या अंत तक कृष्ण के भी जैसा भाव है, कृष्ण का विषय है सुख और गोपियों का आश्रय भी, इसलिए इस आश्रय में ही वो अधिक समझेगा। गीत गोविंद हाँ वो तो सब ऐसा ही विरह में है, और अंत में क्या है अंत में मिलन दिखलाया मिलन में आया और वो भी साधन भक्ति का दिखलाया और उसमें सब उत्कंठता से लेकर और सब उसमें दिखलाया और वो सब उसी में सखी आकर के उनको समझाती है ले जाने के लिए और कृष्ण को बुरा भला भी कहती है राधिका, किंतु अंत में स्वाधीन भर्तृका के रूप बदल करके पूर्ण सुख में वो हो जाता है। अंत में ये प्रश्न करेंगे जो कौन चाहता है जो विरोह, किसने प्रश्न किया, कोई चाहता है विश्व का कोई भी नहीं। इसलिए उसमें में जबकि स्फूर्ति है स्फूर्ति में मिलन होता है उसमें चित्त प्रसन्न हो जाता है, उसमें राधिका जी का कृष्ण से मिलन नहीं है स्फूर्ति हो रही, तमाल वृक्ष को ही कृष्ण समझ करके आलिंगन किया उसमें कैसा आनंद उनका है, जो समझने वाला है अनुभव हमने वही समझेगा। वस्तुतः पूर्णता विरह दुख हित उत्पन्न है, विरह दुख के बाद में जो मिलन होगा उसमें पूर्णता होती है, किंतु संभोग 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 जत्व नहीं, इसलिए प्रसन्न वत्तिष्ठ पद से वति का प्रयोग यहां पर हुआ है और इसीलिए उसी अवस्था में प्रमोद राशि स्फूर्ति उसमें विरह के बाद में जो स्फूर्ति में मिलन होता है या वैसे मिलन होता है उसमें महाप्रचुर आनंद होता है। भावार्थ यह है कि प्रियतम जनेर सहित क्रीड़ा विशेष आचरित हेले मन जे रकम महाप्रसन्न है सही रूप विरहजनित शोकार्ती उपशम पर ऐसा ही हुआ था। ये तो खत्म करेंगे उस समय सुख सुख जो उनको स्फूर्ति होती है उस समय में उसका तो दूसरा कोई कारण नहीं है, क्या कारण है वो विरह भी आनंदजनक है इसलिए ऐसा होता है। अतः यहाँ विरह दुख हैते स्फूर्ति हैते से तहा मंतव्य करते हुए इसलिए विरह दुख में भी सुख की अनुभूति होती है उनको ऐसा समझे।
जन्म ওখানে নিয়ে নিয়ে জিগরি করে দেখুন
ভিক্ষা করে
জিগরি থাক আপনাদের
তো তো ভিক্ষ ভিক্ষ
না
So Krishna, he took Narad inside the room. Narad, out of fear and out of a little bit of shame, was afraid to come in. He was thinking, I've caused so much pain to Krishna and to his devotees. Therefore, Krishna, catching his hand, brought him inside. Oh, Narad, you are my nearest and dearest vice, you are my nearest and dearest devotee. I know that you always do everything only for my happiness. Therefore, there is no cause for fear, and you have never committed any offense, any aparad. Because Krishna himself, he wants to preach the glories of the gopis. And Narad, knowing the manovista of Krishna, has fulfilled his desire. How? Narad is looking for the greatest recipient of the mercy of Krishna. So he is moving from Prayag, then to Hanuman, then to the Yadus, then to the Pandavas, then now to Dwarka. So Narad, you have fulfilled my desire, and you have helped me to remember the glories of the gopis and brijvasis. So Guru Maharaj is now giving description and vichar of what is viraha and what is milan, what is separation and what is meeting. So we should always remember that prema is not a material thing. It is a chinmoy vastu, a transcendental object, subject. So this viraha, this separation, is nothing but a transformation of that transcendental prem. Guru Maharaj said again and again, always remember this thing. Externally, it looks like a great form of unhappiness. But no, it's not a great form of unhappiness, it's a great form of happiness. So when this viraha, this prem vikar, goes in its highest stage, then that dukkha also increases, that unhappiness increases unlimitedly. And when it becomes completely matured in its most fullest extent, especially in Srimati Radhika, we can see then ecstatic symptoms like mrityu, death, moha, unconsciousness, these are manifest in that personality. At that time, they're experiencing great happiness, but very hard to understand. So this suffering of separation is like the worst type of suffering. If we take all the suffering in this world and multiply it millions of times, it's not equal to one drop of the suffering the devotee feels in separation from Krishna. This is a transformation. This viraha is simply a transformation of dukkha. So question comes, if there's so much unhappiness, then how can the devotee experience pramod or ecstasy, ananda, happiness? If there's so much unhappiness, then how a devotee can feel happiness? That question. And now Guru Maharaj is giving conception of Srila Sanatana Goswami. What is the answer to that question? The Brijvasi, especially gopis, are thinking, Krishna is coming tomorrow, or the next day, or the next day, or the next day, or the next day, but ultimately he's not coming at all. So how much separation they feel at that time? So Krishna himself is saying, only I can give the evidence, only I can understand what that separation is, because I saw with my own eyes. Where, for example, like in Prem Sarova. Krishna is saying, I saw that separation, so only I can understand it. So only I can understand what happiness they also experienced at that time. So there's two types of separation. One type is the separation Krishna feels for the gopis, and another type of separation is the separation that the gopis feel for Krishna. But here, especially, I think the separation of the gopis for Krishna is explained. So Guru Maharaj said, we've explained this 10, 15 times. In separation, when the devotee feels great separation from Krishna, that time they have sruti, or they have momentary vision, or direct darshan of Krishna just for a flash. So, only one who has experienced that unhappiness of separation can experience the happiness of meeting again with Krishna in sruti. For example, after Krishna finished Dantavakra, 3 months he was in Dwarka. Then after killing Dantavakra, he returned. That time, Krishna and all the Brijvasis all went back to Goloka Vrindavan. So this is like a order. After one experiences great unhappiness, then one feels a great happiness, then a great unhappiness, then a great happiness. So after the Brijbasis felt separation for 3 months, then Krishna took all Brijbasis back to Goloka Vrindavan. That time, how much ecstasy they felt in Goloka Vrindavan? Because there is no separation there. Or some little separation when Krishna goes cow-raising, but not a great deal. So after extreme happiness, then the devotee feels extreme, after extreme unhappiness, then the devotee feels extreme happiness again when he meets with Krishna. So after separation, they experience the great ananda of meeting again with Krishna. For example, Srimati Radhika, or Srimati Radhika is feeling separation from Krishna, great unhappiness. That time, in Spurti means what? A momentary manifestation. She feels Krishna covering her eyes. That time, how much before she is unhappy, and she thinks, oh, who is that? Is that you, Lalita? Is that you, Vishaka? Is that this gopi, that gopi? Then she smells the fragrance of Krishna's hand. Oh, no, no, it's you, Krishna. You should reveal yourself fully. That time, how much happiness Radharani feels after separation. Who can understand these things? Only someone who has experienced them directly can understand. Otherwise, you cannot understand. So there are two types of this happiness. One is visaisu, the happiness that Krishna feels in meeting with the gopis. And another one is asarasu, the happiness that the gopis feel in meeting with Krishna. So obviously, and of course, the happiness that the gopis feel in meeting with Krishna, this is greatest. So this all seen in, especially in Gita Govinda. So question coming again. And who wants separation? Like Srimati Radharani, she sees a tamal tree, a black tree, she embraces it. How much happiness she feels then? So the answer in conclusion to the question is Sanatana Goswami. How the devotee feels happiness in separation, they feel happiness by again meeting with Krishna inside that separation.
Krishna Karen. यदि प्राणाधिक प्रिय वस्तु व्यक्ति का विस्मरण हो जाए तो ये मरण की अपेक्षा भी उनके लिए निंदनीय है। गोपियां क्या चाहेंगी कभी जो कृष्ण को हम भूल जाएं? गोपियां कहती हैं हम काले को सदा के लिए भूल जाना चाहते हैं। मृगरी हुई कपिंद्रम दिव्य देह लुब्ध धर्मा स्त्री मकृत विरूपा स्त्री जीत कामयानम बलिमपि बलिमत्वा धान सब असित सखई दुष्ट जम तत् कथा। उनका स्मरण, उनकी लीलाएं, कथाएं हम भूल नहीं सकते। वो हमने के लिए मरण के समय यही प्रियजन का लक्षण है। तो कह रहे हैं कि यदि कभी भी कोई साधक क्या गोपियां नहीं चाहती ये कृष्ण को हम भूल जाए, ये तो उनके लिए महानिंदनीय और मृत्यु के समान है। जे कहो कोई भी प्रियजन के स्मरण कार्य को जीवन दान समझो, जिस समय उनकी कथा नहीं स्मरण होगी वो मर ही जाए। यद्यपि अपने जीवन के समान प्राण प्रिय प्रियजनों का कदापि विस्मरण नहीं होता, संभव नहीं, मरने के बाद ही हो सकता है। तो गोपियांगी तो मरेंगी नहीं, तथापि किसी प्रकार से उनकी विस्मृति होने से ऐसे मालूम होता है उनकी विशेष स्फूर्ति गति होती है। कभी भी स्मरण नहीं होता, सब समय उनका स्मरण होता है, किंतु कोई 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 विशेष स्थिति में उनका विशेष स्मरण हो जाए। ललिता जी हंस के माध्यम से कृष्ण को दूत भेज रहे हैं, कह रही हैं कि देखो मथुरा से निकल कर और तुम कैसे कैसे नंदगांव में जाओगे उसका रास्ता बतला रहे। मथुरा में ललिता जी, तो वो मथुरा जाने के लिए रास्ता बतला रहे हैं। रास्ता बतलाते हुए कहते कि भंडीर को बाएं तरफ से रख करके जाना है या दाहिने तरफ से रख करके। आज वो भंडीर सूख रहा है, मृत प्राय हो गया है। कृष्ण की, कृष्ण वहां अब नहीं जाते जहां पर रास करते थे और करते थे। भंडीर बन को प्रणाम करना, ये छठी करा में तुम प्रणाम करना। वहां पर गोप लोग वहां पर रहते थे, वहां पर कृष्ण की कैसी कैसी दाम बंधन लीलाएं इत्यादि हैं, तो उनको बतला रहे हैं, बतला रही हैं। कौन बतला रहा है? ये ललिता जी हंस को, उन्हीं का प्रसंग आ जाता है जो कृष्ण ही भेज रहे हैं, किंतु वो भेज रही हैं ललिता जी। अच्छा, उसमें जो स्मरण कर रही है उनका कैसा लग रहा होगा? सब लीलाएं याद, ये है उनका विशेष। जब वो हंस को देखी और वो उड़ करके जा रहा है उधर की तरफ में, तो उनको स्फूर्ति हुई कृष्ण की, और बस सब लीला। ये लीला न रहे, स्मरण न रहे, तो वो मर जाएंगे। हम लोग भी भजन में, मार्ग में क्या करना चाहते हैं? लीलाओं का स्मरण, अष्टकाली लीलाओं का स्मरण क्या है? उन्हीं लीलाओं का स्मरण। स्वाभाविक गति से यदि इसका स्मरण नहीं आता, कृष्ण के लीलाओं का, तो साधक के लिए वो मरण प्राय, साधक वो साधक ही नहीं है। इसलिए हम जब कभी होता है बृहद भगवतामृत का या और सब, जैसे ये है भजन रहस्य, भजन रहस्य हम करेंगे आराम, या कोई भी लीला हो, दशम स्कंद की लीलाएं हैं या उनका दामोदर अष्टक इत्यादि पाठ करते हैं, सब किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं, जो स्मृतियां हैं। तो जब जी स्मृति आती है क्या होगा? तो और भी आनंद पर, इसमें तो सब समय है साधारण रूप में, किंतु विशेष। जैसे हम लोग, अरे भैया छोड़ो, इधर इधर देख, आप फिर उधर मुख किया, अरे उधर में क्यों मुख कर रहा है भाई? उसे अमृत हम दे रहे हैं, तो उधर विष की तरफ मिल जाए, प्रसंग भूल गया, प्रसंग नहीं भूल। हाँ, जैसे यहाँ पर चावल दाल तो रोजी बनता है और सब्जी, और जो उसमें परमान्न बन जाए और उसमें रसमलाई बन जाए और दही का सुंदर अच्छा सा, क्या कहते हैं, फल फूड, वो यदि बन जाए खूब अच्छा सा, तो कैसा रहे? मन के द्वारा खाइए। तो उसी तरह से कहते हैं कृष्ण का स्मरण उनको रोज हो रहा है, किंतु स्मरण के साथ में कोई उसका मसाला मिल गया, वैसा यदि उद्धव मिल गए फिर क्या हुआ? उद्धव से कह रहे हैं कृष्ण लीला का चरित्र का सबका पूर्ण वो विवरण, बीच में जो उद्धव कुछ कहते हैं तो उस बात को काट करके और वो उनको बतला रहे हैं। कितना आनंद उस विरह में भी हो रहा है, इसी को कृष्ण कहते हैं ये अनुभव गम्य है। यदि साधक भजन करते 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 इन लीलाओं का स्मरण नहीं कर पाता है, तो अभी भजन में प्रवेश नहीं किया, तब तक साधन ही साधन है। अब भजन क्या है? सेवा, अष्टकाल की लीला में डूब करके उसकी सेवा करता है। उससे भी अधिक है और ये सब, जैसे रथ यात्रा का प्रसंग है, वो आ जाए तो गोपियां उनको ले आ रही हैं। हे देवर्षि, आपने मेरे मनोकामना पूर्ण की और मेरा महान उपकार किया, महान उपकार किया। इन सब तत्वों को, तत्वों को हमारे मुख से सुनवा करके हमको स्फूर्ति हुई और हमने ये सब तत्वों को बतलाया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, क्या चाहते हैं ये मांगे। हम लोग किसी से कोई वर मांगेंगे तो क्या मांगे। एक आदमी अंधा था, विवाह शादी नहीं हुई, पुत्र भी नहीं और दरिद्र था। शंकर जी आए, बोले वर मांगो, एक ही वर मांगो। तुमने कहा कि मैं अपने पुत्र को सोने के थाल में, सोने की कटोरी में दूध और भात खाते हुए दर्शन कर, अब बाकी क्या रह गया, कुछ रहा बाकी। मैं अंधा कैसे देखूंगा जब आंख खाएगी तब। और सोने के कटोरी में दूध और भात अपने बेटे को दे, बेटा भी हो गया। शंकर जी ने कहा कि बहुत चतुर, बहुत चतुर। भक्त लोग इसे भी चतुर होते हैं। भक्त लोग किसके लिए मांगते हैं, अपने वो कृतार्थ हैं, इसलिए जो कुछ भी वर मांगेंगे जगत के लिए मांगते हैं। यदि पिता सचमुच में पिता है तो कोई आकर के, कोई महात्मा ऋषि आए तो कहते हैं प्रभु हमारा लड़का सुखी रहे, अपने लिए वर नहीं मांगते। ये स्वभाव, ये है महत्जनों का स्वभाव, भक्तों का स्वभाव। परीक्षित जी ने कहा जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो। बिना को धारण करके और भगवान का सब नाम कीर्तन करना। राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद। क्यों कौन कौन उनका कीर्तन सुन करके भगवान प्रसन्न है, स्तव स्तुति करने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, विशुभांशुते प्रणमामि हरे। स्तुति करने लगे। आप अवघट दानी हैं, भक्तों की मनमंशा परिपूर्ण करने वाले हैं। अच्छी जी कह रहे हैं, हे माता जी, मुनिवर जो नारद जी स्वयं प्रयाग से दशाश्वमेध तीर्थ घाट से चले, दौरा इस द्वारावती तक पहुंचे हैं, द्वारका नगर तक पहुंचे, और विप्रों से लेकर के जो जो भक्तों से संभाषण किया, हनुमान से किया, उसके बाद में उद्धव इत्यादि से किया, अब यहाँ पर कृष्ण से स्वयं हो रहा है। इन सबको सुन करके क्या नारद जी पूर्णार्थ उनको प्राप्त नहीं हुए, उनका कुछ बाकी रहा, सब कुछ छोड़ देता। अर्थात जो जानना चाहते थे कि विश्व में, ब्रह्मांड में सबसे कृष्ण का कौन सा प्रिय पात्र है, इसी के लिए निकले हैं। उनको मालूम हुआ कि नहीं अभी तक, जो कौन सबसे प्रिय पात्र है, कौन है राधिका जी जान करके भी मुनन थे। नारद ऋषि अत्यंत हर्ष के साथ में बड़े सुख से कृष्ण के मुख से सुनने के लिए उदार श्रेष्ठ भगवान के निकट प्रथम तब बक्ष मानती है बस उन्होंने पहला अपना बर मांगा। पहला बर क्या मांगा? हे कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र कश्यापि तृप्ति रस्तु कदापि न भगवत भगवतो अनुग्रहे भक्तौ प्रेमनी चानंद भाजे। हे कृष्ण चंद्र, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से भक्ति में कभी भी किसी को पूर्ण रूप से तृप्ति न हो। कोई भी भक्त साधक से लेकर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग और अधिकतर क्या हो, और अधिक हम एकदम कुछ न। राधा जी कहती है न प्रेम गंधोस्ति दरापि, अनुभव के साथ में कह रहे हैं यही भक्ति का लक्षण है, यही कृष्ण की कृपा है। यदि किसी को मिल जाए उसका सर्वार्थ सिद्धि हो। भक्ति में कभी भी किसी को पूर्ण तृप्ति न हो, यही हमारा प्राप्ति। अपने लिए क्या मांगा? अपने लिए कुछ मांगे उसमें अपना भी हो गया, हमको भी भक्ति में तृप्ति न हो। अरे भक्ति में तृप्ति नहीं, तुमको क्या बेटा चाहा, न पुत्र चाहा, न धन संपत्ति, न गोलोक वृंदावन, न मुक्ति, क्या चाहा? कुछ नहीं। ये भक्ति में कभी भी किसी कृष्ण प्रेम में किसी को तृप्ति न हो। भगवान बोले हे विदग्ध चूड़ामणि नारद, परम रसिक नारद, चतुर चतुरों में चतुर शिरोमणि नारद, अपनी ये क्या बर प्रार्थना किया? ये तो ऐसा है ही है, हमारे कुएं में पानी आ जाए, और कुआं में तो पानी पहले से है, तो फिर क्या? हाँ, ये कह सकते हमारे पानी जो पीने का जो कुआं है उसमें सुगंध आ जाए, गंगा नदी का पानी आ जाए, है ना? तो कुछ मतलब है। नारद जी ऐसे विदग्धों में चूड़ामणि है, इसलिए कहने लगे। तो कृष्ण कह रहे हैं ये कोई बर है? ये तो भक्ति का स्वभाव है, किसी को तृप्ति नहीं होती। ओ, मेरी कृपा का, मेरी भक्ति का, मेरे प्रेम का ऐसा ही स्वभाव है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये क्या बर मांगा? दूसरा कोई बर तो मांगो। कृष्ण की कृपा में, कृष्ण की जितनी कृपा हो ना, कहीं थमने वाली है? कृष्ण से कृपा कृपा किया जाओ, तुम गोपियों के सेवक हो जाओ, जब ही कृपा रह गई। यदि कहेंगे राधा जी की कृपा हो जाए तभी कुछ कृपा रह गई, तो वो कहेंगे जैसे हम रूप जी के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा करें तो भी रह गई। यदि वो मांगेगा क्या निज जने हा काकु भर गदगदयात दिवाचा जाचे निपत्त भू दंडवत उद्भटाती अश्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे तव गणने गणनां विधेहि नहीं नीचे गणे। इसलिए दूसरा बर मांगो। हे मुनिवर, आप प्रयाग तीर्थ से आरंभ करके और यहां तक भ्रमण करते करते हमारे यहाँ जो पधारे हैं और भक्तों के विभिन्न हमारे कृपा पात्रों के संबंध में आपने देखा, वे सभी हमारे कृपा पात्र हैं। कहां से? प्रयाग तीर्थ के ब्राह्मण से लेकर के और राधा जी तक, और सभी परिपूर्ण अर्थ हैं अपने अर्थ में, किंतु किसी को तृप्ति नहीं। जगते निस्तार कर भैया, और जगत को निस्तार करने वाले जने जने शक्ति धरे ब्रह्मांड तारी तार मध्य केवल किंचित तारतम्य सभी पूर्ण पूर्णार्थ है किंतु उनमें तारतम्य है तथापि तादर मध्य कोनो एक जनो कोनो प्रकार परितिप्त होते पाए किंतु उनमें कोई भी परितिप्त नहीं है पूर्णता तो सभी है किंतु कोई भी परिपूर्ण रूप से अब मुझे नहीं चाहिए भक्ति नहीं चाहिए भगवान की कृपा नहीं चाहिए ये नहीं। अतएव हमारे निकट आप कोई दूसरा भव चाहिए बोलो
The gopis never want to forget Krishna, and they never want that Krishna should forget them. For them to forget Krishna or for Krishna to forget them is worse than death, and is worse, is the greatest disgrace to them. They think Krishna is equal to our life. So on no occasion do they ever vismana, means forget him on any occasion. But sometimes it's some very, very, very special occasion they can seem to forget Krishna. Like Lalita, she called a swan and she wanted that swan, oh swan, go to Mathura and take a message to Krishna. So Lalita is giving directions. Oh, when you go to Mathura, don't forget to go this road and keep Bandivan on your left side, because there in Bandivan, Krishna performed many pastimes like Rasleela, Dambandan Lila. And in this forest, you can this pastime. So don't forget when you go past this forest, in that forest, do pranam. So what's happening in separation, Srimati Lalita Devi is remembering all the pastimes of Krishna. So Guru Maharaj saying, what do we want to do as sadhaks? What is our responsibility? Our main responsibility is to remember all these pastimes. But this should be natural, swabhavik. Should not be forced or unnatural. If the pastimes of Krishna are not flowing in the heart like an unbroken chain, then we are not sadhaks at all. We are not even an avasav sadhak. Because what is bhajan? Bhajan means seva. Seva means to remember astakaliya lila. So the more we form bhajan, the more taste we have. Just like if every day we get rice and chawal, okay, good. But then sometimes we get rasgulla, then more taste. Then rasmalai, the more taste. Fruit salad, more taste, more experience. So the same way as the devotee continues in bhajan, different pastimes, different shastras, different classes that we're hearing, he'll experience more taste, and more taste. So Krishna is very happy. Oh, Narada, what benediction you want, whatever you want, I'll give you. The Guru said, how people of this world, they always choose something material. So, one time there was a poor man, very poor, blind also, and not married, no son. So he was doing austerities to please Lord Shiva. So Lord Shiva said, what do you want? I'll give you. That man was very clever. What did he say? Yes. I want to feed my own son. I want to see and feed my own son with a golden plate. So how much he is clever. In one benediction, he asked for three things. So Guru Maharaj said, also the devotee has to be like that, a little clever, intelligent. What to ask Krishna for? So someone who is a father, who is an actual real father, in the real sense, if any sadhu or mahatma comes, will he ask for anything for himself? No. He'll say, oh Mahatma, please bless my son. Please give blessing to my family members. So this is the nature of devotee. He never asks for anything for himself. So now from the beginning, when he met the first Brahman, then went to Prayag, then went to meet Hanuman, Prahlad, this and that. His intention from the beginning was to find who is the greatest recipient of the mercy of Krishna. And last, where did he come to?
The vision of... Last? devotees.
So his intention was to find who is the greatest recipient of the mercy of Krishna. So he went from the Brahman to Prayag to Hanuman to Prahlad, moving up and up, and lastly came to Srimati Radhika. Therefore Krishna was very happy. Oh Narada, you have fulfilled my heart's desire to explain the glories of Srimati Radhika to the whole world. Therefore, take a benediction. So what did Narada ask for? He never asked for anything for himself. He said, oh Krishna, I want that any devotee, whether he is sadhak, whether he is siddha, whatever condition he is in, whether he's in the state of nishtha, ruchi, or shakti, whatever, I want that he should never be satisfied with bhakti. And that he should always experience more taste, more taste, more taste. Like Srimati Radhika herself says, no prema gana no sweet. Oh, I have no taste of prema at all. I could not smell anything. So Narada, not asking for anything for himself. So Krishna very much happy by that answer and laughing. Oh, Vidanta Chudamani. Oh, Narada, best ruler, clever personality. Oh, Rasik Shastra, oh, topmost of Rasik Vaishnavas. What type of benediction is this? Because this is the nature of my bhakti anyway. You might give an example. If someone has a pond and is already full of water and he prays to Bhagavan, oh, fill my pond with water, what is this? Already water is there. So Krishna said, this is already the nature of my bhakti, that no one will ever be satisfied, no matter how much they perform. But someone who is a little clever, they may ask, oh, not only might my pond be full of water, but that water should also become Ganga Jal, Ganga water, then more intelligent, more fragrant. So if someone is asking, trying to give a benediction, most people will ask for worldly things. But what should we ask? Someone who is very clever may say, oh yes, I want to serve under the guidance of gopis, gopi bhava, gopi prema. But someone who is even more intelligent, no, I don't want that. I want to serve under the guidance, I want to serve Srimati Radhika directly. But someone who is even more intelligent than that, what will they pray? Oh no, I want to serve directly under the guidance of Sri Rupa Manjari, that topmost blessing. Like Sri Raghunath Das. He's playing, oh Radharani, please write my name in your own book, in the list of your own servitors. Thank you very much.
Thank you. Call. हम लोग यहाँ सवेरे में आरती के बाद में यहाँ पर कथा होगी दामोदर लीला और इसके बाद में कीर्तन इत्यादि के बाद में कथा के बाद में ब्रेकफास्ट नहीं होगा नो ब्रेकफास्ट टुडे टुमारो एट वंस एट 10 PM ऑफ महाप्रसाद वेलकम एंड यू कैन सर डोंट टेक डोंट ईट This sort of Sar Mahaprasada. And after that, be ready for Govardhan. Or bus will, in any case, it must start at 1 or before 2 p.m. 1 p.m. So, after taking prasad, at 12, you can, 2 hours, or 1 hour, you should be ready with your luggage and come where they will hear. And after that, we will go to for Govardhan and in the way, okay, Paintha and Chandra Sarovar. We will go and I want to reach our destination, Girdhari Gaudiya Math, before 4. Because we will have to adjust everyone, hosting and all other things. Be ready like that. Go Premanande.